नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नम शिवयम, कृषि और किसान कल्याण मंत्री जीएनएस राजशेखरन और पुदुचेरी भाजपा के अध्यक्ष वीपी रामलिंगम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हजारों लोगों ने इस रैली में तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। इससे पहले श्री शाह गोरीमेदू पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। पुदुचेरी पुलिस को बधाई देते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से एक है।
राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान में चीनी के भंडारण की स्थिति, उत्पादन और आवश्यकताओं का आकलन किया गया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्रों से 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।